हम लोग श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 12 अध्याय के 22वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। मरीचिर अंगी मरीचिर अत्रि अंगी रसो पुलस्त्य पुलह कतु भृगुर्वशिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। इसका अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की इस तरह मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलह कृतु भृगु वशिष्ठ तथा दक्ष तथा दसवें पुत्र नारद उत्पन्न हुए। तात्पर्य, विराट जगत के सृजन पालन तथा संहार की संपूर्ण प्रक्रिया बद्ध जीव को भगवत धाम वापस जाने का अवसर देने के निमित्त है। ब्रह्मा ने अपने सर्जनात्मक प्रयास में सहायता के लिए रुद्र को उत्पन्न किया, किंतु रुद्र प्रारंभ से ही सारी सृष्टि को निगलने लगे, अतः उन्हें ऐसे विनाशकारी कार्य से रोका जाना पड़ा। फलतः ब्रह्मा ने अच्छे बच्चों की दूसरी टोली का सृजन किया, जो अधिकांशतः सांसारिक सकाम कर्मों के पक्ष में थे, किंतु वे भली भांति जानते थे कि भगवत भक्ति के बिना बद्ध जीवों को कोई लाभ नहीं मिलता। फलतः उन्होंने अंत में अपने योग्य पुत्र नारद को जन्म दिया, जो सारे अध्यात्म भातियों के परम गुरु हैं। भगवत भक्ति के बिना कोई व्यक्ति कर्म के किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकता। यद्यपि भक्ति का मार्ग किसी भी भौतिक वस्तु से स्वतंत्र है, एकमात्र भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति जीवन के असली लक्ष्य को दिलाने वाली है। अतः ब्रह्मा के समस्त पुत्रों में श्रीमन नारद मुनि द्वारा की गई सेवा सर्वोच्च है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कदामयम ददाति स्वपदांतिकम। वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलम श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सद्जातं सहगणनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते कुबेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्व भवानी सुते देवी प्रणमामि हरिभ्ये वाञ्छा कृपेश्च कृपा सिंधुभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 नमो विष्णु पादाय कृष्ण श्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान स्वामी नामने नमस्ते। सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। तो यहाँ पर मैत्रेय जो ऋषि हैं और विदुर जी के बीच में संवाद चल रहा है, तो मैत्रेय जी बता रहे हैं ब्रह्मा जी की सृष्टि के बारे में। तो उन्होंने बताया कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि आरंभ की तो उन्होंने पहले अविद्या की सृष्टि की है ना, अविद्या बनाई। तो यहाँ पर बताया गया कि अविद्या किसे कहते हैं, तो अविद्या पांच जो कारक हैं अविद्या के है ना, पांच कारक क्या है अविद्या के, तमस मोह महामोह तमिश्र और अंध तमिश्र है ना। शुरू के आप श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें आएगा वर्णन। तो एक्सप्लेन किया है कि जो तमस है, तमस का मतलब है जीव के अपने स्वरूप की विस्मृति है ना, और जीव का स्वरूप क्या है, जीवन स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास, है ना। सो ये भूल जाना कि हम लोग कृष्ण के नित्य दास हैं, ये इसको तमस कहते हैं। तो जैसे ये भूला जीव के जो हम लोग कृष्ण के नित्य दास हैं, वैसे ही दूसरा मोह उत्पन्न हो गया, है ना। मोह का क्या मतलब है? मोह का मतलब है ये सोचना कि मैं ये शरीर हूं, इसको बोलते हैं देहात बुद्धि, है ना। तो देहात बुद्धि शुरू हो गई, है ना, हमने बोलना शुरू कर दिया मैं ये शरीर हूं। फिर जब ये मोह उत्पन्न हो गया तो फिर तीसरी कारक अविद्या का सामने आ गया, क्या है? महामोह। महामोह का मतलब है कि परिवार मेरा है, घर मेरा है, गाड़ी मेरी है, नहीं ये मोबाइल फोन मेरा है। सो ये सारी बातें शुरू हो गई जो इंद्र तृप्ति के विषय है, जो इंद्र तृप्ति के पदार्थ है, उस पे स्वामित्व की भावना जागृत हो गई, है ना। पोजेसिवनेस, ये मेरा है, है ना। तो ये दिमाग में चलना शुरू हो गया। जब ये चलना शुरू हो गया तो फिर चौथा जो है अविद्या का कारक सामने आया, और चौथा अविद्या का कारण क्या है? तमिश्र, है ना। सो जैसे किसी ने हमारे देह और देह से संबंधित वस्तुओं के बारे में कुछ भी बाधा उत्पन्न की तो एकदम क्या आ गया? क्रोध आ गया, नहीं? तो तमिश्र का मतलब है क्रोध, एकदम गुस्सा आ गया। सो भगवत गीता में भी कृष्ण बता रहे हैं क्रोध कैसे आया, नहीं? ध्यायतो विश्यान पुंसा संगतेषु जायते, संगतेषु जायते, प्राप्त करने की इच्छा आ गई कि ये वस्तु है, इससे मेरी इंद्र तृप्ति होगी, मुझे चाहिए। तो जैसे दिमाग में आया इसको बोलते हैं काम। कोई इंद्र तृप्ति के वस्तु प्राप्त करने की इच्छा को काम बोलते हैं कि मेरी किसी एक इंद्रिय को या सारी इंद्रियों को सुख मिलेगा इससे, है ना, कामात। सो और काम से क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है ना। फिर क्रोध से भ्रम इत्यादि सारी चीजें उत्पन्न हो जाती है, हाँ। और फिर लास्ट में कृष्ण क्या कहते हैं? अगर इसी रास्ते पे आगे बढ़ते गए तो विनश्यति, जीव का नाश हो जाएगा। सो नाश हो जाएगा से क्या मतलब है? कि बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाएगा, है ना। सो ये पांच जब अविद्या के कारक ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए, कौन कौन से कारक है? पहला क्या था? तमस, है ना। फिर दूसरा मोह, और तीसरा महामोह, हाँ, और चौथा तमिश्र। तो जब क्रोध आ गया, है ना, और पांचवा कारक क्या है? अंध तमिश्र, है ना। अंध तमिश्र का मतलब है मृत्यु, अंध तमिश्र मतलब मृत्यु। सो अविद्या का जो अंत है वो मृत्यु में होता है, हाँ? अविद्या का परिणाम है मरना। सो कोई कह सकता है कि जो डिवोटीज हैं वो भी तो मर जाते हैं, हम तो देखते हैं डिवोटीज की डेथ हो जाती है। फर्क होता है डिवोटीज की डेथ में और अभक्त की मृत्यु में, फर्क होता है। जो भक्त है वो शरीर छोड़ता है भगवान के नित्य लीला में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन जो भक्त है वो मरता है दोबारा किसी और माता के गर्भ में प्रवेश करने के लिए, है ना। तो ये भेद है। तो जब ब्रह्मा जी ने ये अविद्या बनाई तो उनको बहुत दुख हुआ उन्होंने, है ना, तो उन्होंने सृष्टि का कार्य रोक दिया, फिर से तपस्या करनी शुरू कर दी उन्होंने। जब तपस्या कर रहे थे, मैं थोड़ा गला खराब है ना, सो जब तपस्या उन्होंने की, तो तपस्या करने के बाद फिर उन्होंने विद्या को जन्म दिया उन्होंने, है ना। सो विद्या को उन्होंने जन्म दिया, तो विद्या को जन्म कैसे दिया, विद्या चार तरह की होती है ना, और वो चार तरह की विद्या बताई गई है, सांख्य योग्य, वैराग्य और तपस, है ना। और ये चार जो विद्या के कारक है, चार तरह की विद्या है, इसका आगे इसको बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी ने चार पुत्रों की को उत्पन्न किया, है ना, चार कुमार सनक सनातन इत्यादि, है ना। तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ जाके सृष्टि का निर्माण करो, तो उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि विद्या थे वो, उन्होंने बोला नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, हम ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, हम लोग सांख्य योग वैराग्य तपस इन चारों का हम अनुशीलन करना चाहते हैं, इसका पालन करना चाहते हैं, हम नहीं शादी करेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्या आ गया, क्रोध आ गया, तमिश्र के प्रभाव में आ गए, लेकिन फिर उन्होंने बुद्धि लगाई और अपने क्रोध को रोका। लेकिन वो क्रोध जो है, वो क्रोध उनके चेहरे पे दिख गया, ना कोई व्यक्ति क्रोधित होता है उसके चेहरे पे दिख जाता है ना, एकदम आंखें लाल, गरम गरम सांसें छोड़ता है, नहीं। सो ये सारे जो स्थान है, जो आंखें हैं, मन है, वायु है, इंद्रियां हैं, ये सारे क्रोध के, रुद्र के निवास स्थान है। यहाँ पर 12वें अध्याय में इसका वर्णन आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो जैसे ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, रोक लिया, तो लेकिन फिर भी उनका गुस्सा उनकी भ्रकुटी से प्रकट हो गया, लाल और नीले रंग के अंदर, है ना। तो उनका नाम था रुद्र, है ना। तो जब वो प्रकट हो गए, तो रुद्र जो है शिवजी, तो उन्होंने प्रकट होते ही रोना शुरू कर दिया, बोल रहा है मुझे बताओ मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ पे रहूं, क्या करूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा अरे घबराओ मत, तुम रोते हुए पैदा हुए हो, तुम्हारा नाम आज से रुद्र हो गया। तो फिर ब्रह्मा जी ने उनको 11 नाम और दिए, है ना। सो 11 नाम दिए और उनको बोला कि तुम जाके संतान उत्पत्ति करो, सृष्टि का निर्माण करो जाके। तो मैं रहूंगा कहां पर, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप मन, इंद्रियों में, वायु में, पानी में आपका निवास रहेगा, है ना। तो प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं भागवत में कि जैसे गुस्सा आता है तो व्यक्ति अपने हाथ पर ऐसे करता है, गरम गरम सांसें छोड़ता है, आंखें लाल हो जाती हैं, तो ये सब रुद्र के लक्षण है, क्रोध के लक्षण है। तो शिव जी ने सृष्टि का निर्माण शुरू कर दिया। अब जैसा बाप वैसे बेटे, अपने जैसे उन्होंने बना दिए अनेक जीव, तो वो सबने क्या शुरू कर दिया, वो सबने सृष्टि का संहार शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी भी अटैक कर दिया, ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया क्या कर रहे हो, रुको, तुम पहले तपस्या करो, देखो मैंने भी तपस्या की थी, तो मैंने अच्छी सृष्टि का निर्माण करना शुरू किया, नहीं तो तुम भी तपस्या करो, तो जब जरूरत होगी तो तो मैं आवाज लगाऊंगा। तो कब आवाज लगाएंगे ब्रह्मा जी? शिव जी को कब बुलाएंगे? संहार के समय बुलाएंगे, आओ भैया अपने गणों को लेके आओ और संहार कर दो, है ना। इसलिए आप देखो ब्रह्मा जी के आदेश का, अपने पिता के आदेश का पालन कर रहे हैं। शिव जी क्या करते रहते हैं? हमेशा तपस्या करते रहते हैं, है ना। और वो तपस्या में क्या करते हैं? वो क्या करते हैं तपस्या में? तो चैतन्य चरितमृत में बताया गया है कि जो ब्रह्मा जी हैं वो अपने चार मुखों से क्या बोलते हैं? कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हाँ, और जो शिव है, शिव के कितने मुख हैं? शिव के पांच मुख हैं, है ना। तो शिव जी अपने पांचों मुखों से क्या बोलते हैं? राम राम हरे हरे। तो शिव जी हमेशा भगवान पर, भगवान कृष्ण राम कुछ फर्क नहीं है, भगवान पर हमेशा अपना ध्यान केंद्रित करके रखते हैं। इसलिए आप कहीं भी देखो शिव जी हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं, है ना, क्योंकि अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी ने कहा यार बहुत हो गया, दोबारा से एक और संतानों की खेप उत्पन्न करता हूँ। तो उन्होंने फिर 10 संतानें उन्होंने उत्पन्न की। तो उन 10 संतानों का वर्णन यहाँ पर दिया गया है ना, मरीचि अत्रि अंगिरा। पुलस्त्य पुलह कृतु भृगु वशिष्ठ दक्ष। तो ये 9 उन्होंने पुत्र को जन्म दिया, उन्होंने उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों से प्रकट हुए। आगे वर्णन आएगा, आप पढ़ना। लेकिन ये जो 9 पुत्र उन्होंने पैदा किए ये सारे सकाम कर्मी थे, है ना। तो ब्रह्मा जी को सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, उन्होंने कहा कुछ संतोष नहीं आ रहा। सृष्टि का निर्माण करने का मेरा मकसद क्या है? ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि विराट जगत के सृजन पालन तथा संहार की संपूर्ण प्रक्रिया बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस ले जाने का अवसर देने के निमित्त है। सृष्टि बनाई लोगों को वापस भेजने के लिए, लेकिन 9 पुत्र पैदा किए उन्होंने जो कि सकाम कर्मी है। सकाम कर्मी का मतलब है कि फल की इच्छा से काम करेंगे, फल की इच्छा से काम करेंगे तो भगवत धाम कैसे जाएंगे, है ना। भगवत धाम नहीं जा सकते फल की इच्छा से काम किया। क्यों? क्योंकि आपने अच्छा काम किया लेकिन फल की इच्छा थी, तो फल की इच्छा थी तो फिर फल भोगने के लिए दोबारा इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा, है ना। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। तो भोगने के लिए वापस आना पड़ेगा, चाहे ऊपर के लोकों में चले गए लेकिन आना पड़ेगा। और फिर जब स्वर्ग लोक में सारे अपने पुण्य भोग लेंगे, फिर क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो धड़ाम से नीचे पृथ्वी लोक पे गिर जाएंगे, फिर से काम कर्म शुरू कर देंगे, है ना। उसका क्या फायदा, है ना। ऐसे ही एक ग्रंथ है बृहत भागवतामृत, है ना, जो श्रीला सनातन गोस्वामी ने लिखा है। तो उसमें नारद मुनि ढूंढ रहे हैं कि सबसे अच्छा डिवोटी कौन है। तो वो पहले काशी के एक ब्राह्मण से मिले। हाँ, तो वो बहुत महान ब्राह्मण थे, बहुत यज्ञ इत्यादि कर रहे थे। तो नारद जी ने कहा कि आप बहुत महान हो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं महान नहीं हूँ। एक दक्षिण प्रदेश में एक राजा थे सार्वभौम, कह रहे वो महान है, आप जाके उनसे मिलो, मैं तो उनके सामने बिल्कुल तुच्छ हूँ। तो नारद जी उनके पास गए, तो उनके पास गए तो उन्होंने बोला आप बहुत महान हो। तो उन्होंने बोला मैं कहाँ महान हूँ, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, महान तो इंद्र है। हाँ, इंद्र इतने महान है कि स्वयं भगवान उनके छोटे भाई के रूप में उनके साथ रहते हैं। इंद्र के छोटे भाई कौन है? वामन देव। वामन देव इंद्र के छोटे भाई नहीं है, वहीं पे रहते हैं उनके साथ में, है ना। और इंद्र बहुत अच्छे से उनकी आरती पूजा करते रहते हैं उनकी, है ना। तो नारद देव, नारद मुनि जो है वो वहां चले गए स्वर्ग में। नारद जी कहीं भी जा सकते हैं, नहीं। सो जब नारद जी वहां गए इंद्र के पास, तो इंद्र को बोला, आप तो बहुत महान हो। इंद्र ने बोला, क्या महान है, कभी कोई असुर आ जाता है, कभी कोई असुर आ जाता है, भागते रहते हैं, डर लगता है। सो सकाम कर्मी जो है वो कितने ऊंचे पद पे चला जाए हमेशा अशांत रहता है। तो क्योंकि उनको संतुष्टि नहीं हो रही थी, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी, तो अपने जो सृष्टि बनाने का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए ब्रह्मा जी ने दसवां पुत्र उत्पन्न किया। और दसवां पुत्र कौन है? नारद जी, है ना। हम लोग भागवतम के शुरू शुरू में पढ़ते हैं कि व्यास देव जी ने अनेक पुराणों की, अनेक ग्रंथों की रचना की, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही थी, है ना। तो वहां पर कौन आए? नारद मुनि आए, है ना। और नारद मुनि ने उनको बोला, क्यों परेशान हो? तो उन्होंने बोला, इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, मन संतुष्ट नहीं हो रहा। उन्होंने बोला, आपने भगवान की जो है लीलाओं का वर्णन नहीं किया, आपने बोला है भगवान महान है, लेकिन भगवान कौन है स्पष्ट रूप से बोलो कि भगवान कौन है, है ना। आपने ईशोपनिषद में एक श्लोक आता है, ईशोपनिषद का 15वां श्लोक है ना, हिरण्मय पात्र है ना, सत्यस्य अपिहितं मुखं, हिरण्मयेन पात्रेण। हिरण्मयेन, हिरण्मय का मतलब है बहुत ही चमकदार, सुनहरा। हिरण्मयेन पात्रेण, पात्रेण का मतलब है पर्दा। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखं, सत्यस्य की जो परम सत्य है, अपिहितं, अपिहितं का मतलब है ढका हुआ। सत्य से अपिहितम मुखम, मुख ढका हुआ है। तो जो भगवान के शरीर की कांति है, वो एक सुनहरा पर्दा है, और वो पर्दे ने क्या किया हुआ है, भगवान का जो सुंदर मुख कमल है वो ढका हुआ है। अपिहितम मतलब ढका हुआ है, दिख नहीं रहा है ना। तो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आपने ढक लिया अपने सुंदर मुख कमल को, जो इतने चमकदार आवरण से, तत्त्वम पोषण अपावृणु, हे पालक, हे पालनहार। पोषण का मतलब है पालनहार, है ना, पोषण, है ना, पोषण से पोषण, पोषण, है ना। तो उन्होंने बोला, तत्त्वम पोषण अपावृणु, इस पर्दे को हटाओ। तत् तत् का मतलब है वो जो पर्दा है, हिरण्मयेन पात्रेण, इस पर्दे को प्लीज हटा दो। तो क्या होगा हटाने से? सत्य धर्माय दृष्टये, जो सत्य है, सत्य मतलब भगवान, धर्माय मतलब भक्त, जो सत्य है भगवान जो है, भगवान के दर्शन हो जाएंगे भक्त को। तो भक्त प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज ये पर्दा हटाओ, लेकिन कौन है भगवान स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बता रहे हो तुम, है ना। आप स्पष्ट रूप से बताओ, कृष्णस्तु भगवान से। इसलिए व्यासदेव जी ने कुछ संकोच नहीं किया। जैसे ही नारद देव जी ने उनको बोला, उन्होंने भागवतम के शुरू में ही उन्होंने क्या बोला, कृष्णस्तु भगवान स्वरूप, एते चाम्स कला पुरुषा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इंद्रारि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे, है ना, ऐसा बोला ना। इंद्रारि जो इंद्र के शत्रु हैं, इंद्र अरि, इंद्र के शत्रु मुरारी, मोर के शत्रु, है ना। इंद्रारि व्याकुलम लोके, जब इंद्र के शत्रु मतलब कौन है, असुर, जब असुरों से सारे जो लोग हैं वो घबरा जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, मृडयन्ति, भगवान प्रकट होते हैं युगे युगे, हर युग में भगवान प्रकट होते हैं, जैसे कलयुग में भगवान प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, है ना। सो ब्रह्मा जी ने नारद जी को जन्म दिया, नारद जी को उत्पन्न किया कि आप अब जो है भक्ति जिस कारण से सृष्टि बनाई गई है वो आप, कई लोग बोलते हैं सृष्टि क्यों बनाई, दुखी दुखे नहीं, क्या फायदा था सृष्टि बनाने का, ना ही बनाते है? जब से पैदा हुए हैं दुखी झेल रहे हैं। ऐसा वही लोग बोलते हैं जिनको सृष्टि के निर्माण का उद्देश्य नहीं पता। भगवान के पास विकल्प था, भगवान के पास विकल्प था कि हमें निष्क्रिय रखते, है ना। जब भगवान श्वास अंदर खींचते हैं ना, तो सारे लोग, सृष्टि, जीव, मां, तत्व सब भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं ना। यस्य एक निश्वसित कालमथ विलंब्य जीवंति लोम विलिजा जगदंडनाथा। विष्णुर महान सह यस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। तो भगवान सांस छोड़ते हैं महाविष्णु तो सृष्टि बन जाती है, सारे लोक ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं। जब भगवान सांस अंदर खींचते हैं तो सारे जो लोग हैं ब्रह्मांड सब नष्ट हो जाते हैं। तो सांस छोड़ने और सांस लेने में करोड़ों खरबों साल बीत जाते हैं, ब्रह्मा जी का पूरा जीवन बीत जाता है, और ब्रह्मा जी के 100 वर्ष भगवान के एक सांस छोड़ने और सांस लेने में बीत जाते हैं। ब्रह्मा जी का दिन 432 करोड़ साल का है, ब्रह्मा जी की रात 432 करोड़ साल की है, 864 करोड़ साल का, 64 साल का एक दिन है ब्रह्मा जी का, 864 गुना 30 एक महीना, गुना 12 एक साल, ऐसे 100 साल ब्रह्मा जी के जो है वो भगवान की एक श्वास में जीवंति लोम विलिजा जगदंड नाथा, जो जगत के नाथ हैं ब्रह्मा जी इत्यादि, एक श्वास में काम खत्म, है ना। कितने महान होंगे जिनके एक सांस में इतने महान ब्रह्मा जी खत्म हो जाते हैं, नहीं। तो भगवान के पास विकल्प था कि सृष्टि बनाए या सृष्टि नहीं बनाए। अगर सृष्टि नहीं बनाते तो हम लोग भगवान के शरीर में निष्क्रिय पड़े रहते, लेकिन भगवान नहीं चाहते कि उनकी जो संतान है, मम वांछो जीव लोके जीव भूत सनातना, हम लोग भगवान की संतान है ना, तो भगवान नहीं चाहते कि उनकी जो संतान है वो निष्क्रिय पड़ी रहे, है ना। तो भगवान चाहते हैं कि वो संतान जागे और बहुत अच्छे अच्छे काम करे, एंजॉय करे, है ना। सो इसलिए भगवान बार बार उनको जगाते हैं सृष्टि का निर्माण करके, है ना। और भगवान चाहते हैं कि सबसे अच्छी जो एंजॉयमेंट है, सबसे अच्छा आनंद वो मिलेगा भगवान के अपने घर में, इसीलिए भगवान सृष्टि बनाते हैं कि चलो देखो तुम लोग तो बहुत थोड़े से हो, बहुत ज्यादा लोग तो वैकुंठ जगत में हैं, वो लोग कितना सुख का अनुभव कर रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं सुख का अनुभव करते, तुम लोग भी आ जाओ, इसीलिए भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं मौका देने के लिए, ये अवसर प्रदान करने के लिए कि हम लोग ऐसे कार्य करें जिससे हम वापस भगवान के धाम चले जाएं, नहीं तो निष्क्रिय तो हो ही जाएंगे हम अनेक सालों के लिए, करोड़ों अरबों सालों के लिए हम दोबारा से निष्क्रिय हो ही जाएंगे जब भगवान श्वास अंदर खींचेंगे, है ना। सो यहाँ पर जो वर्णन आया कि उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए, है ना, हम उसमें से कुछ एक लोगों के बारे में आपको बता देते हैं। तो जैसे अत्रि मुनि है, अत्रि मुनि की वाइफ का क्या नाम है, अनुसुया, है ना, पता है तुम्हें ना अनुसुया। तो जो अत्रि मुनि है ये शुद्ध भक्ति थे, ये है ना, जैसे हमने बताया कि ना पहले जो 9 संतानें थी वो सकाम कर्मी थे, है ना। तो अत्रि जी ने प्रार्थना की, तपस्या करनी शुरू कर दी अत्रि जी ने संतान की इच्छा के साथ में, है ना। जो तपस्या की तो उनके सिर से प्रकाश निकलना शुरू हो गया। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जो प्रकाश निकल रहा था वो मानसिक संतोष था। अब तपस्या करेंगे, अपनी इंद्रियां निग्रह कर लेंगे, अपनी इंद्रियों को वश में कर लेंगे, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, तो बहुत ही ज्यादा सुख की प्राप्ति होगी, है ना। तो वो जो सुख है वो प्रकाश के रूप में प्रतिबिंबित हो रहा था, है ना। तो वो प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे आप के जैसा पुत्र चाहिए। तो जब प्रार्थना करते करते 100 साल बीत गए, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हो गए उनके सामने। तो अत्रि जी ने कहा आप में से भगवान कौन है। उनको पता ही नहीं था। तो उन्होंने कहा आप में से भगवान कौन है, पहले प्लीज मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा चलो छोड़ो जो भी है भगवान, तुम पता लगा लेना कौन है, लेकिन अब हम लोग तुम्हें दर्शन दिए तो भगवान के दर्शन कभी भी व्यर्थ नहीं आते। जब आप लोगों को भगवान दर्शन देंगे, एक लिस्ट बना के रखो हमेशा, जैसे ये लिस्ट है ना, ऐसे एक लिस्ट बना के रखना, भगवान जब भी प्रकट होंगे पूछेंगे क्या चाहिए बेटा आपसे, है ना। तो फिर इधर उधर बगले में झांकना, फटाक से लिस्ट निकालना, बोलना ये 4 चीजें चाहिए मुझे, है ना। सो जब भी भगवान दर्शन देते हैं हमेशा कुछ ना कुछ वर जरूर देते हैं, है ना। आप बोलो नहीं भगवान ने चाहिए, नहीं नहीं कुछ तो लो, नहीं भगवान ने चाहिए तो लेता नहीं लेता, है ना। भगवान जब भी प्रकट होंगे कुछ ना कुछ दे के जाएंगे भगवान, है ना। तो आप लोग पहले से सोच के रखना चाहिए, है ना, ये नहीं सोचना चाहिए हमें भगवान का दर्शन देंगे, है ना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमेशा ये आशा रखनी चाहिए कि भगवान हमें अवश्य कृपा करेंगे, अवश्य भगवान दर्शन देंगे। तो जब दर्शन देंगे उस समय आप क्या मांगोगे, ये हमेशा याद रखना चाहिए। तो फिर अत्रि मुनि ने क्या बोला, मुझे तो बेटा चाहिए, मुझे नहीं पता आप में से कौन भगवान है, लेकिन मुझे बेटा चाहिए। तो फिर तीनों ने क्या बोला, तथास्तु। तो फिर अनसुया के 3 बच्चे पैदा हुए, है ना, 3 बच्चे पैदा हुए। कौन कौन थे, तो ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से उनको जो ब्रह्मा के प्रतिनिधि है, ब्रह्मा जी के आंशिक विस्तार जो है वो है सोम। सोम कौन है, चंद्रदेव। तो चंद्रदेव प्रकट हुए, पैदा हुए अनुसूया से, है ना। और भगवान विष्णु के आंशिक अवतार कौन हुए, दत्ता से, है ना। और शिवजी के आंशिक अवतार कौन थे, गुस्से वाले भक्त, दुर्वासा है ना। तो दुर्वासा जो है वो अत्रि और अनुसुया के पुत्र है और रुद्र के आंशिक अवतार है, ठीक है ना। सो इसी तरह से जो पुलस्य है, पुलस्य की जो वाइफ का नाम था, ये सब कर्द मुनि की बेटियां थी जिनका इन्होंने विवाह कर दिया था। सो पुलस्य की जो वाइफ है, पत्नी, उनका नाम था, पता नहीं क्या लिखा हुआ, हविर्भू, हविर्भू। सो उनसे उनकी दो संतानें पैदा हुई, अगस्त्य ऋषि और विश्रवा। विश्रवा कौन है? ये हमारे अग्निहोत्री प्रभु है ना। इन्होंने अपने वंश का, ये रावण के वंश थे ये। सो दो संतानें हुई, अगस्त्य और विश्रवा। विश्रवा की भी आगे पत्नियां थी। सो एक पत्नी से उनका एक बच्चा पैदा हुआ। एक तो चलो रावण मेघनाथ कुंभकर्ण थे, और रावण मेघनाथ कुंभकर्ण का सुतेला भाई कौन था? अब विभीषण भी था, एक और था, चलो वो तो सगे भाई थे, कुबेर है ना। तो रावण जाके अपने भाई की संपत्ति हड़प ली थी उसने जाके, क्या है इधर ला, और उसको भगा दिया था कुबेर को। सो रावण के पिता विश्रवा, विश्रवा के पिता, विश्रवा के पिता पुलस्य, ठीक है ना। तो रावण ऐसा नहीं था कोई बड़े गिरे पड़े परिवार में पैदा हुआ था, बहुत ही महान परिवार था, ब्रह्मा जी का वंशज है। लेकिन गलत सोच के कारण, गलत नियत के कारण उसका देखो क्या हाल हो गया उसका, नहीं। ऐसी जो मरीची है, मरीची का पुत्र हुए कश्यप, फिर कश्यप ने 13 विवाह किए, तो दक्ष की 13 पुत्रियां थी, तो उनसे विवाह किया, तो उनमें 2 पुत्रियां थी, दीति और अदिति। तो अदिति से आदित्य देवता प्रकट हुए, उत्पन्न हुए, और दीति से दैत्य, है ना। और 2 महान दैत्य कौन थे? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, है ना। एक चेन अभी दिख रही है ना, चेन अभी है ना। ये सारा वर्णन आपको अगले स्कंध में, 4th स्कंध के पहले अध्याय में आपको मिल जाएगा। अगर आपने पढ़ना है तो आप 14th स्कंध का पहला अध्याय खोल लो, उसमें सारा पूरा डिटेल में दिया गया कौन किसका बेटा था, कौन किसका बाप था, आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना। इसी तरह से जो भृगु है, भृगु के 2 पुत्र हुए धाता विधाता, फिर उनके आगे 2 पुत्र हुए मृकंड और प्राण। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मृकंड के पुत्र थे मार्कंडेय ऋषि, है ना। तो आपको ये बताने के लिए कि मार्कंडेय ऋषि जो है वो भी ब्रह्मा जी की लाइन में है। तो इस तरह से जो मार्कंडेय ऋषि है उनका वर्णन भागवतम के 12th स्कंध में आता है ना। सो इस तरह से बाकी के भी आपको मिल जाएगी डिटेल कि कैसे है। लेकिन जो सबसे जो उत्तम योग्य पुत्र ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया वो है नारद जी। और नारद जी का जो कार्य है, नारद जी का कार्य है लोगों को भक्ति में जोड़ना। और हम लोग कौन है? हम लोग भी नारद जी के वंशज हैं। हम लोग वंश 2 तरह से चलता है ना, शुक्र विधि और श्राद्ध विधि, है ना। तो शुक्र विधि तो क्या है कि गर्भ से उत्पन्न हुआ, है ना। और श्राद्ध विधि है गुरु शिष्य परंपरा से, है ना। तो हम सब लोग नारद जी के पूछे थे। और जिस तरह नारद जी का कार्य है भगवान की जो उद्देश्य है सृष्टि का निर्माण करने का, क्या उद्देश्य है, लोगों को भगवान के धाम वापस लेके जाना। तो जिस प्रकार नारद जी भगवान के उद्देश्य में सहयोग कर रहे हैं, हमारा भी कर्तव्य है कि हम लोग भगवान के उस इस उद्देश्य में हम लोग अपना योगदान दें और हम लोग अच्छे से प्रचार करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भक्ति में जोड़ें और उनको भगवत धाम ले जाने की सुविधा प्रदान करें। हरे कृष्णा।